नमस्कार दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे की कमी है, कि पैसा कभी आपके पास रुकता तक नहीं, जितना आता है उतना ही चला भी जाता है? शायद कोई लाखों में से एक होगा जो इसका उत्तर ना देगा। तो जब हर किसी के पास पैसे की कमी है, तो फिर पैसा है किसके पास? अगर ध्यान से सोचेंगे तो समझेंगे कि असल में पैसे की कमी नहीं, संतोष की कमी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके पास खूब सारा पैसा है, लेकिन हां, शायद हर किसी में संतोष की कमी जरूर है, जिसे आप पैसा, धन, वैभव, समृद्धि अर्थात प्रॉस्पेरिटी समझते हैं, वो मां लक्ष्मी की कृपा होती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, यानी कि एक जगह टिक कर नहीं रहती। मैं शैलेंद्र भारती आज आपके सामने भागवत पुराण की इस कथा से ये बताने जा रहा हूं कि कैसे लक्ष्मी जी को अपने पास रोक के रखें। हां, परंतु एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं होता। तो आइए कहानी शुरू करता हूं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से वही प्रश्न पूछा जो अभी मैंने आपसे पूछा था। भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी सबसे दुर्लभ हैं, पर हैं वो चंचल भी, तो फिर ऐसा कौन सा व्रत, होम, तप, जप या नमस्कार किया जाए जिससे लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपके पास रुक जाएं? भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि प्राचीन काल के एक बहुत बड़े मुनि हुए, उनका नाम था भृगु मुनि। इन्हें भृगु मुनि ने अपनी बेटी ख्याति का विवाह विष्णु जी के साथ किया था, यही ख्याति फिर लक्ष्मी कहलाई। सोचिए, जिसे विष्णु जी मिल जाएं दोस्तों, उसकी खुशी का क्या ठिकाना रहेगा। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न थीं और अपनी प्रसन्नता में वो पूरी दुनिया को आनंदित करने लगी। अर्थात जब लक्ष्मी जी प्रसन्न हो तो पूरी दुनिया में शांति, सबके पास खाना, हर ओर वैभव और खुशियां थी, पूरे संसार के सारे उपद्रव शांत हो गए। जब सब वैभव में हैं तो किस बात का उपद्रव? ब्राह्मण अपने पूजा पाठ में व्यस्त थे, हर ओर धर्म का वातावरण था, पर यह बहुत जल्द ही बदलने वाला था। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे जगत की शांति देखी नहीं जाती, और उन्हें ही हम दैत्य या राक्षस कहते हैं। दैत्यों को समझ में आया कि इस धन, वैभव और समृद्धि का एकमात्र कारण लक्ष्मी है, तो उन्होंने भी उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ और तपस्या प्रारंभ कर दी। दैत्यों का देवताओं से हारने का सबसे बड़ा कारण था उनका अधर्म। बल और पराक्रम की उनमें कोई कमी नहीं थी, पर वो काम बुरे करते थे और देवताओं से हार जाते थे। पर यहां तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। दैत्य अब धर्म के रास्ते पर लक्ष्मी जी के लिए तप करने लगे, दूसरी ओर देवता लक्ष्मी जी के घमंड में धर्म को छोड़ने लगे। जब सब कुछ प्राप्त हो, धन और शांति हो, तो फिर किस लिए धर्म का पालन करना? बिन कुछ विशेष प्रयास किए ही जब सब सुख सुविधा मिलने लगे तो भगवान को याद करना भी छोड़ दिया जाता है, और ऐसा ही देवताओं ने भी किया। फिर जब बुरा समय आता है, जो कि आता ही है, एक दिन ऋषि दुर्वासा कहीं जा रहे थे तो अपने ही घमंड में चूर इंद्र ने उनका अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से पूरी धरती कांपती थी। दुर्वासा ने उसी समय श्राप दे दिया कि जिस समृद्धि और वैभव पर इतना घमंड है, उसे पूरी तरह खो दोगे। अभी तक देवता अपनी पवित्रता और सत्यता को छोड़ चुके थे, पर तब भी लक्ष्मी जी उनके पास टिकी हुई थी। पर इस श्राप के बाद लक्ष्मी जी देवताओं को छोड़कर चली गईं। अचानक से ही सब कुछ बंजर हो गया। पूरी दुनिया में हर ओर गरीबी और दुख छा गया। कारोबार सब बंद हो गए। अकाल और दुर्भिक्ष पड़ने लगे। पूजा पाठ, हवन आदि सब रुक गए। होना क्या, देवताओं को समझ आ गया। परंतु क्या करें, अब तो देर हो चुकी थी। दूसरी ओर दैत्यों ने अपने तप से लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लिया। पर कुछ समय बाद उनका भी वही हाल हुआ जो देवताओं का हुआ, और अपने स्वभाव के अनुसार दैत्य तो देवताओं से कई गुना आगे निकले। वो भी अहंकार करने लगे, अत्याचार करने लगे। उनके अनैतिक काम तो देवताओं से भी बुरे थे। हर ओर से दुखी होकर लक्ष्मी जी क्षीर सागर में समा गईं। तब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत या अनुष्ठान कर सकते हैं जिससे कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं और हमारे बीच में वापस आ जाएं। तब देव गुरु बृहस्पति ने अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाया। देव गुरु बृहस्पति बोले कि जो कोई भी पूरी निष्ठा और सही विधान के साथ श्री पंचमी का व्रत करता है तो उसे धन और वैभव की कमी कभी नहीं आ सकती। इतना ही नहीं, जो स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से करती है उसको सौभाग्य, संतान और धन सब कुछ प्राप्त होता है। श्री पंचमी के व्रत की ऐसी महिमा सुनने के बाद सारे देवता इस व्रत को पूरे और सही विधान के साथ करने लगे, और देखते ही देखते देवताओं के बाद दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण, राजागण और तो और सामान्य जन भी इस व्रत को करने लगे। लक्ष्मी जी के जाने के बाद जो तबाही हुई थी उससे सबकी बुद्धि ठिकाने जो आ गई थी। व्रत तो सबने पूरा कर लिया, परंतु अब अभी केवल पूजा और अनुष्ठान हुआ था, कर्म तो अभी बाकी थे। पूरी तरह से पूजा कर लेने के बाद विष्णु जी ने सबको बताया कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर में विघटित हो गई हैं, अर्थात ऐसे मिल गई हैं जैसे दही में मक्खन। और उसके बाद फिर वो महान कार्य हुआ जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, समझे आप, लक्ष्मी जी को यानी कि वैभव, समृद्धि और धन को अपने पास यदि रखना है तो सबसे पहले आपको अपना आचरण, अपना बिहेवियर अच्छा करना होगा। धर्म और कर्म दोनों ही करने होंगे। जब जब भी धन आपके पास में आए तो उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना होगा, न कि रोना धोना चालू कर दिया कि कितना कम पैसा है। यदि अधिक धन आ जाए तो भी भगवान और पूजा पाठ को कभी न भूलें। भूलेंगे तो लक्ष्मी जी तो देवताओं के पास भी नहीं रुकी, आपके पास क्या रुकेंगी। और सबसे बड़ी बात, अधिक से अधिक प्राप्त करने की होड़ में न लगें, कंपटीशन में न लगें, संतोष करना भी सीखें। लक्ष्मी जी पर भरोसा रखें, जब उन्हें लगेगा वो स्वयं ही आपके पास आ जाएंगी। तो दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती इसी विश्वास और आशा के साथ इस कहानी को विराम देता हूं कि आप भी अपने जीवन में संतोष धन को अवश्य पाएं। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त को। धन्यवाद।